नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मर्त्यलीलौपैकं सयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स स च सौभगर्धेः परम पदम भूषण भूषणांगम। जन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतां विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। जात जिनके मर्त्य लीला मनुष्य लीला का औपैकम साधन स्वयोग माया बलम अपनी स्वरूप शक्ति का बल दर्शयता जगत को दिखाने के लिए गृहीतम आविष्कृत विस्मापनम विस्मय में डालने वाला स्वस्य स्वयं अपने को च और सौभग हृदय है सौभाग्य समृद्धि का परम पदम परम आश्रय भूषण भूषणांगम भूषणों को भी भूषित करने वाला अंग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव महोत्सव पर भगवान के कुछ गुणों के वर्णन की इच्छा हुई। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष करके वाणी का श्रील प्रभुपाद को कहा जाता है गौर वाणी प्राचार्य। गौर वाणी प्रचारी ये उनका एक विशेषण है और चतुर्थी में संप्रदाय में प्रचारिणे कहते हैं। जो संस्कृत व्याकरण को थोड़ा जानते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। गौरवाणी प्रचारिणे श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और उनके द्वारा दिया गए उपदेश ये दो सेक्शन हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्री चैतन्य भागवत में भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का भरपूर वर्णन है और चैतन्य चरितामृत में भगवान के उपदेशों का भी प्रचुर वर्णन है लीला के साथ। ये दोनों ग्रंथ मिलकर के एक होते हैं तो बारंबार प्रायः प्रत्येक साल ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का स्वागत किया जाता था। तो इस बार गौरवाणी का स्वागत करेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत से भक्तों से बहुत सा उपदेश किया है, जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, और इसके पूर्व श्री राय रामानंद जी और सार्वभौम भट्टाचार्य अनेक महान पुरुष जैसे प्रद्युम्न मिश्र अधिक साथ भगवान ने बातचीत किया है। तो उनकी वाणी श्रीमद् भागवत के रहस्य का उद्घाटन करती है, सही सही अर्थ। रूप श्रील सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ा उपदेश दिया है, कलेवर की दृष्टि से सबसे अधिक। 20वें अध्याय में मध्य लीला के भगवान चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार सनातन गोस्वामी से मिले, सिर्फ सनातन गोस्वामी कारागृह से छुटकर चैतन्य महाप्रभु से मिले, उनके मिलन का और इसके बाद संबंध तत्व का वर्णन किया गया है। तीन तथ्य हैं, प्रमुख विषय हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध तत्व कृष्ण है क्योंकि वे आश्रय हैं, सभी जीव उनके हैं, अनंत भगवत स्वरूप उनके हैं, ये प्राकृत जगत भी अप्राकृत जगत भी सब कुछ उनका है, उनसे निकला है, उनका संबंध है, ये सबके मूल हैं। इसलिए संबंध तत्व का अर्थ कृष्ण तत्व और अभिधेय का अर्थ होता है कृष्ण के प्राप्ति का साधन भक्ति योग, इसको अभिधेय कहते हैं। और प्रयोजन क्या है जीव का वास्तविक, वह है कृष्ण प्रेम, तो इसको प्रयोजन कहा गया है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। 20वें और 21वें अध्याय में संबंध तत्व का वर्णन किया उन्होंने, 22वें में अभिधेय तत्व, 23वें में प्रयोजन प्रेम प्रयोजन, और 24वें में आत्माराम श्लोक की व्याख्या किया भगवान ने सनातन गोस्वामी के प्रति, 61 अर्थ किया आत्मा रामाश्च मुने इस श्लोक की, और 25वें में काशीवासी लोगों को विशेषकर सन्यासियों के या सबको भगवान ने प्रेम दान दिया और पुनः नीलाचल लौट आए। ये जो सेक्शन हम लोग यहां पर लेंगे ये संबंध तत्व का है, भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन पहले किया गया है और उनके साथ ही अनंत भगवत स्वरूप का वर्णन अस्त्र भेद आदि बता करके अनंत कोटि वैकुंठ में जो जो भगवान की श्री मूर्तियां हैं श्री विग्रह हैं स्वरूप में उनका वर्णन किया गया। और अंत में 21वें अध्याय के अंतिम में भगवान के ऐश्वर्य का और माधुर्य का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण का कैसा ऐश्वर्य है, उसी प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में आए कृष्ण का दर्शन करने, तो द्वारपालों ने पूछ दिया, भगवान से कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो भगवान पूछे कौन ब्रह्मा, तो द्वारपाल आकर के कहे ब्रह्मा जी से कि आप अपना आईडी बताइए कौन ब्रह्मा, और तो ब्रह्मा जी तो चकरा गए, तो सोचने द्वारकाधीश को आज क्या हो गया, हमारे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या कि पूछ रहे हैं कौन ब्रह्मा। तो थोड़ा रंजिश में कहे, जाकर कह दो सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए। चतुर्मुख उन्होंने कहा कि चार मुख वाला सीधा कह देना, या भगवान को पता नहीं है, वो तो चकित हो गए कि क्या लीला है, चार मुख वाला और सनत कुमार का पिता। तो जाकर के कहे कि तो सनत कुमार के पिताजी आए हैं चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, तो भगवान ने कहा ठीक है बुला उनको। ब्रह्मा जी प्रणाम किए गए, श्री भगवान ने पूछा कैसे आए, ठीक से सृष्टि हो रही है ना, और सब ठीक है, असुरों का कोई उत्पात तो नहीं है, और सब मैनेजमेंट ठीक चल रहा है ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा जी आपकी दया है। तक वो प्रणाम करके खड़े हुए बातचीत हो रही थी, तब तक तो एक 8 मुंह वाले ब्रह्मा आए, फिर 16 मुख वाले ब्रह्मा आए, इस तरह से 100 मुख वाले, करोड़ मुख वाले, कई कई ब्रह्मा वहां उपस्थित हो गए। इसके बाद रुद्र कितने आए, इंद्र कितने आए, संख्या में अपार और शरीर के साइज में ब्रह्मा जी से कई गुना बड़ा है। ऐसा कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि उन ब्रह्माओं के और रुद्रों के और इंद्रों के बीच में श्री ब्रह्मा जी, जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं, वे ऐसे लग रहे थे जैसे विशाल पहाड़ के आकार वाले हाथियों के बीच में कोई खरगोश हो। वो देख रहे थे चकित होकर कि क्या बाप रे, ये कृष्ण का ईश्वर, कृष्ण कैसे ईश्वर हैं। जब ये लोग प्रणाम करते थे भगवान के चरण रखने की चौकी पर, तो इनके मुकुट टकराते थे झनझन झनझन झनझन, मानो मुकुट गुणगान कर रहे थे। और कृष्ण को फुर्सत नहीं थी किसी से पूछने की, किसी से पूछ नहीं रहे थे, केवल आया करके धक्का से प्रणाम कर रहे थे, खड़े हो जा रहे थे। वो तो भगवान का चिन्ह में भवन है, कितनी भी ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई में हो सकता था। तो सब लोग वहां आए और ब्रह्मा जी तो बिल्कुल फाफर हो गए, बिल्कुल हक्का बक्का। इस तरह का ऐश्वर्य का एक नमूना यहां दिया गया है। तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करके अंत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण र ऐश्वर्य अपार अमृतेर सिंधु अवगाहिते नारल तार छुईल एक बिंदु। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का ऐश्वर्य अपार अनंत सिंधु के समान है। उसका वर्णन क्या किया जाए, मैं तो केवल एक बिंदु छुआ हूं। इसके पहले ऐश्वर्य का वर्णन बहुत किया गया। तो ऐश्वर्य कहिते प्रभुर कृष्ण स्फूर्ति हरिला माधुर जे मजिल मन एक श्लोक पढ़िला। ऐश्वर्य का वर्णन करते करते भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण की स्फूर्ति इतनी अधिक हो रही थी, उनके स्वरूप का माधुर्य का सब कुछ स्फुरण हृदय में होने लगा, तो इसलिए वे उस आनंद में एक श्लोक पढ़े। यही श्लोक यहां से हम लोग चालू करेंगे। जन्मार्तलीलौ पैकंस योग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से इस श्लोक की व्याख्या किए हैं। यह श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंध का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, 12वां। यह श्लोक मूलतः श्री उद्धव जी के मुखारविंद से निकला है और श्री विदुर जी श्रोता है, सुन रहे हैं जमुना जी के तट पर। तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उद्धव जी कहते हैं कि ओहो, इतना सुंदर श्री विग्रह प्रकट करके सभी जीवों को धन्य करके और भगवान अंततः अपने धाम चले गए, उसको तिरोहित कर लिया उन्होंने अपने रूप को, तो उसका वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से ही हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ना चाहेंगे। जन्मर्त लीलो पैकम, श्री कृष्ण का स्वरूप बपु, मर्त लीला मनुष्य लीला के औपैकम उपाय था, औपैक कहते उपाय से औपैक शब्द बना है, मनुष्य लीला के लिए बिल्कुल उचित बिल्कुल सुयोग्य अपना रूप भगवान ने प्रकट किया इस जगत में। मर्त लीला उपाई का, मर्त लीला करने के लिए। कैसा था वो? स्वजोग माया बलम। वास्तव में उन्होंने अपने स्वरूप को, श्री विग्रह को प्रकट किया इस जगत में। तो एक प्रकार से कहा जाए तो वे अपने चित शक्ति का बल दिखा रहे थे संसार। भगवान की स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। अपना अपनी शक्ति का बल, अपनी योग माया का बल दिखाते हुए उन्होंने इसको प्रकट किया। क्या बल है इस माया शक्ति में, योग माया शक्ति में, कि यह वास्तव में स्वरूप का विशेषण है। भगवान का यह रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है श्री कृष्ण का, इतना सुंदर कि कोई भी व्यक्ति, बड़ा से बड़ा कितना भी विरक्त हो, आत्मा राम हो या जड़ भी क्यों न हो, वृक्ष, लता, पत्थर, नदी और जो भी जीव हैं, सबको ये आकर्षित किया, सबको अपने बस में कर लिया, इतना सुंदर है। तो उसको कहते अपनी योग माया का बल दिखाते हुए गृहीतम, आविष्कृतम, विस्मापनम स्वस्य च। अरे और की तो बात छोड़ दीजिए, उद्धव जी कहते हैं विस्मापनम च स्वस्य, स्वयं श्री कृष्ण भी अपने रूप पर मुग्ध रहते थे। आश्चर्य उनको होता है क्षण क्षण में, मैं कितना सुंदर हूं, उनको स्वयं भावना होती है और बारंबार अपने मुख को दर्पण में देखते रहते हैं या स्फटिक मणि में देखते रहते हैं, गोवर्धन के स्फटिक शिलाओं में जहां तहां, स्तंभ मणि में कई घंटों देखने में रह जाते हैं। तो स्वस्थ विस्मापनम, स्वयं उनको विस्मय में डालने वाला, और वो तो देख पाते हैं केवल कभी कभी जल में, प्रतिबिंब में या दर्पण में और सब में। दूसरे लोग तो भाग्यवान हैं उनसे ज्यादा जो उनको देखते रहते हैं। इसीलिए तो वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए अपना आस्वादन करने के लिए। कहते विस्मापनम, विस्मापन आश्चर्यजनक, विस्मय में डालने वाला, किनको? स्वस्य, स्वयं उनको, श्री कृष्ण को। रूप देखी अपना कृष्ण है चमत्कार, अपना रूप देख करके कृष्ण को चमत्कार होता है। और इसके अलावा जो भगवत स्वरूप है अनंत कोटि, जैसे मत्स्य भगवान, नारायण भगवान, परव्योम में जितने भी प्रभु हैं विष्णु तत्व, वे सब श्री कृष्ण के रूप पर मोहित रहते हैं। यहां तक कि पतिव्रता शिरोमणि लक्ष्मी जी भी मोहित रहती हैं, जबकि उनके पति नारायण हैं, भगवान हैं, पर स्वयं भगवान के रूप पर वे भी मोहित रहते हैं। अपने को भी मुग्ध करने वाला रूप इसका अर्थ है कि स्वयं श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के ही स्वरूप भूत सभी विष्णु तत्व को आकर्षित करता है, विस्मय डालता है। सौभगर्धे परम पदम, और सौभग रिद्धि, सौभग का अर्थ होता है सुंदरता, मधुरता, रसिकता, जो भी है जितने गुण हैं उनको सौभग कहा जाता है। तो सौभग सुंदरता की, महानता की, अनंत गुणों की रिद्धि का परम पद है। रिद्धि मतलब बढ़ा हुआ कोष, उसको समृद्धि कहते हैं। सौभग रिद्धि का बढ़ा हुआ पद है, सबका आश्रय है, और उनके श्री विग्रह पर जो भूषण लगाए जाते हैं तो उससे श्री कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती, भूषणों की शोभा बढ़ती है। इस संसार में व्यक्ति कोई भूषण लगाता है, आभूषण पहनता है, तो वास्तव में आभूषण का अर्थ ही है जो रूप को भूषित करे। तो लोग इसीलिए लगाते हैं कि हम उसे सुंदर लगे, सुंदर लगे, लेकिन श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, उन पर लगा हुआ गहना उनके उनके शरीर पर लगने के कारण और अधिक सुंदर लगता है। भूषण भूषणांगम, इनके श्रीअंग भूषणों को भी भूषित करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का आस्वादन किया जाए। कृष्ण रजते कखेला सर्वोत्तम नर लीला। श्रीपाद सनातन गोस्वामी गंगा जी के तट पर हैं एकांत में, और भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण रजते कखेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपुतार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीला रहयन रूप। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी उनके खेल हैं, अनंत कोटि परव्योम में, वैकुंठ में, अनंत विष्णु स्वरूप से जो भी वो लीला करते हैं, और यहां तक कि अपने गोलोक में भी, श्री द्वारिका में, मथुरा जी में और वृंदावन में जो लीला करते हैं परव्योम में, यहां की बात नहीं कर रहे हैं, इनमें जो भी लीलाएं हैं, जितनी हैं, कृष्ण ने जतेक खेला, जितनी भी उनके खेल हैं, लीलाएं हैं, सर्वोत्तम नर लीला, सबसे श्रेष्ठ है नर लीला। नर बपु तहारा स्वरूप, श्री कृष्ण का जो नर शरीर है यही उनका स्वरूप है। नर बपु तहारा स्वरूप, भगवान ने कोई नर विग्रह धारण नहीं किया है, वही उनका स्वरूप है। और विशेष करके इस ब्रज में गोलोक से लीला के विषय में यह श्रेष्ठ है। गोलोक में भगवान सारी लीलाएं नहीं करते हैं, कुछ लीला ऐसे हैं जिनको यहीं पर करते हैं। तो गोपवेश वेणुकर, वेशभूषा गोपाल का, गोप गायों को पालने वाला, गाय का चरवाहा रखाल, तो ब्रज में गोप वेश है, और वेणुकर और हाथ में बांसुरी है, नव किशोर नटवर, नव किशोर, किशोर मतलब अभी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही करते हैं, यही उनकी अवस्था रहती है हमेशा। नव किशोर, नवीन किशोर और नटवर, वेशभूषा ऐसी है, चाल ऐसी है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं नटवर, समस्त नटों में मुकुटमणि, सबसे श्रेष्ठ। नट का अर्थ होता है नाचने वाला, श्री कृष्ण का स्वरूप ही है, छिड़कता हुआ, नाचता हुआ, चलना, कहीं भी खड़े रहते हैं नाचते नाचने लगते हैं ब्रज में, और उनके लिए कोई रूटीन नहीं है, स्केड्यूल नहीं है कि इधर नाचना है वहां नाचना है, गोचारण के लिए निकलते हैं तो नाचते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, देखते हुए, हंसते हुए, यही उनका स्वरूप है। जब वन में जाते हैं रास्ते में तब भी नाचते हुए, वन में पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि गायों को चराने में कोई चिंता कर रहे हो, गाय तो अपने बांसुरी से चरा लेते हैं, वो नाचते रहते हैं, थिरकते रहते हैं, और अपने ही समान आयु के, अपने समान सखाओं से खेलते रहते हैं। कहीं मयूर के साथ नाचते हैं, कहीं कोयल के साथ बोलते हैं, कहीं हंस के साथ चलते हैं, भौरों के साथ गुनगुनाते हैं, यही उनका शरीर, इसलिए उनको नटवर कहा जा रहा है। और भगवत स्वरूप जैसे गंभीर बैठे नहीं रहते हैं, नटवर है, नव किशोर नटवर, नर लीला है अनुरूप, नर लीला के अनुरूप है यह, इसी को करने के लिए अपना विग्रह प्रकट किए। कृष्ण मधुर रूप सोना सनातन, जे रूपेर एक कण डूबे सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। हे सनातन, कृष्ण के रूप का वर्णन सुनो, जिस रूप समुद्र के एक कण, एक जिस रूप समुद्र का एक कण, एक छटा डुबाए सब त्रिभुवन, तीनों भुवन के प्राणियों को आकृष्ट कर लेता है, डुबा देता है। तीन लोक हैं, पताल, यहाँ पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी से ऊपर दो लोक हुए और पृथ्वी त्रिलोक। तो ऊपर भी बहुत बड़े बड़े देवता हैं, एक से एक सुंदर हैं, विदग्ध हैं, चतुर हैं, रसिक हैं, निपुण हैं, कलाओं में दक्ष हैं। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है, उस सौंदर्य सुधा सिंधु का एक कण, एक बिंदु सबको डुबा देता है, आत्म अपने वश में कर लेता है। डुबाए सब त्रिभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण, और सभी लोगों में जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, सर्व प्राणी करे आकर्षण। सर्व प्राणी से तात्पर्य है पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता दैत्य या यहां तक चर अचर, अचर भी वृक्ष लता समुद्र नदियां पर्वत इस सब भी, इस सब सर्व प्राणी के अंदर आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्व प्राणी करे आकर्षण, सभी प्राणियों को आकर्षित करता है यह रूप। आकर्षण का क्या अर्थ है? आकर्षण का अर्थ है प्राणियों के स्वाभाविक कर्म को छुड़ा देना, उनका जो स्वाभाविक कर्म है उससे इतर दूसरे भाव में हो जाना, अस्तब्ध हो जाना, अपना जो स्वाभाविक काम है वो छूट जाना, ये है आकर्षण। तो अपने स्वाभाविक कर्म में ही जब कोई जीव लगा रहे तो ये आकर्षण थोड़े माना जाएगा, ये आकर्षण नहीं माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए गाय चरने में लगी हो, बछड़ा दूध पीने में लगा हो, पक्षी अपना गाने में या फल खाने में लगे हो, तो ये कोई आकर्षण तो हुआ नहीं। आकर्षण का अर्थ है कि उनके स्वाभाविक संस्कारगत नैसर्गिक कर्मों को छुड़ा देना और अपने में उनके चित्त की और वाणी की शरीर की सभी वृत्तियों को हर कर अपने में लगा लेना, इसको आकर्षण कहते हैं। सर्व प्राणी करे आकर्षण, उस रूप का आगे वर्णन करते हैं। अब इस योग माया बलम काज करते हैं। योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोके देखाइते, तार शक्ति लोके देखाइते। हमें तो गाने नहीं आता है लेकिन गाने की इच्छा होती है। योग माया श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, चित शक्ति पूर्ण चेतन विशुद्ध सत्व परिणति, और उसका परिणाम है विशुद्ध सत्व। चित शक्ति का परिणाम है विशुद्ध सत्व, तो उसकी शक्ति लोके दिखाई थे। भगवान अपनी शक्ति कहे थे अपनी विशेषता को दिखाने के लिए, लोक में लोग देखें। लोक से तात्पर्य है ब्रह्म लोक तक, इंद्र लोक या बलि महाराज का सुतल लोक, पताल आदि कहीं भी बहुत से जीव हैं सब जगत, सबको श्री कृष्ण दिखाना चाहते थे और सबका हित करना चाहते थे, सबको अपने प्रेम का दान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इस प्राकृत जगत में और अपने चिन्मय धाम में ब्रज में अपने को प्रकट किया दिखाने के लिए। यहां से वास्तव में भगवान के माधुर्य का सौंदर्य का यह सेंटर है ब्रज वृंदावन, और यहां से भगवान का सब प्रचार हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था रूप गोस्वामी पाद से, जब रूप गोस्वामी पाद रथ के नीचे आत्महत्या करना चाहते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने मुझे समर्पण किया है, तुम्हारा शरीर मेरा धन है, तुम धरोहर की रक्षा नहीं कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। देखो मां के आदेश से मां का प्रिय करने के लिए मैं वृंदावन में नहीं रह पाऊंगा, तो मैं नीलाचल में रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कृष्ण का जो भी प्रचार है वो हमारे प्रिय मथुरा वृंदावन धाम से होना चाहिए। तो वहां तुम लोग रहो और ग्रंथ लिखना, तीर्थों का उद्धार करना, साधना करके सिखाना, जप करना, ये करना, कई बार उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि मथुरा वृंदावन मेरा सबसे प्रिय स्थान है, पर फिर भी मां के आदेश से मैं वहां नहीं रह सकता, मैं नीलाचल में रहूंगा। तो यह स्थान इस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यहां आविर्भूत हुए, यहां जन्म लिए, यह उनकी जन्मभूमि है। जन्म लीला किए, बाल लीला किए, पौगंड लीला, कुमार लीला, पौगंड लीला और किशोर लीला किए भगवान यहां पर, और यहीं से प्रचार भी कर रहे हैं। वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय का या श्रीमद् भागवतम का जो वास्तविक प्रचार है सिद्धांत का, उसके प्रचारक मूल श्री रूप गोस्वामी पाद जी हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति दिया, तो रूप गोस्वामी पाद इसके मूल प्रचारक हैं, जिन्होंने इतना दिव्य ग्रंथ दिया, और उनके भाई श्री सनातन गोस्वामी और अन्य भी जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि ये सब यहां साधना किए। तो यहीं से ये फैला, भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। उसी को यहां कह रहे हैं कि लोक में दिखाने के लिए, लेकिन यहीं से ब्रज से चालू करके, यही रूप रतन भक्त गणे गुण धन प्रकट कैला नित्य लीला है। नित्य लीला में श्री कृष्ण सब करते रहते हैं, इसी तरह के का सौंदर्य है, सब कुछ है, कुछ लीलाओं को छोड़ करके बाकी अपने नित्य लीला में करते ही रहते हैं, गोलोक में करते रहते हैं। तो इस नित्य लीला से भगवान ने अपने इस स्वरूप को प्रकट किया, ये सब लीलाएं किया। रूप देखी आपनार कृष्ण है चमत्कार, आस्वादित मने उठे काम। अपना रूप देख करके दर्पण में या स्फटिक आदि में श्री कृष्ण को चमत्कार हो जाता है। कभी कभी श्री बलराम जी भी कहते हैं, कृष्ण क्या खड़े हो वहां। तो श्री कृष्ण किसी स्फटिक मणि में अपने को देखते हैं, अपना रूप देख करके इतना विभोर हो जाते हैं, ओहो कितना रस है, कितना आनंद है। जब स्वयं श्री कृष्ण को चमत्कार होता है तो सहज समझा जा सकता है कृष्ण का क्या अद्भुत रूप है। रूप देखी अपना कृष्ण रहे चमत्कार, आस्वादित मने उठे काम। हृदय में लालसा उठती है कि मैं कब आस्वादन करूंगा इसका, कब आस्वादन करूंगा। अरे आस्वादन कर नहीं पाते हैं, दर्पण में अपने को देखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अपने से अपना आलिंगन नहीं कर सकते। अपने से कई क्रियाएं जो नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, है ना। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कोई छूना चाहे, चुमना चाहे, आलिंगन करना चाहे, तो सब बेकार है। श्री कृष्ण ने आस्वादित मने उठे काम, अपना आस्वादन करने के हृदय में लालसा उठती है। एक बार कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं दूसरे अध्याय में कि श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैं कैसे अपना आस्वादन करूं, कैसे आस्वादन करूं, सब सुखी हैं ये श्री गोपियां, श्री राधा रानी, सखा आदि सब परम आनंद ले रहे हैं हमको देख देख करके, हमसे और हम स्वयं ही इस रस से बाकी, क्या बन करके मैं चाहूं देखना। तो एक बार करते 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 सबसे अधिक मेरे रूप का आस्वादन महाभाव में श्री राधिका करती हूं। तो उनके मन में हुआ कि मैं राधा बन करके देखूं। तो कृष्णदास कविराज भूषण कहते हैं कि हृदय धक धक ही, जब उन्होंने सोचा कि राधा बनूं तब मैं अपने रूप का आस्वादन कर पाऊंगा, तो हृदय में धक धकी हो रही है कि अरे धक धकी का अर्थ कोई डर नहीं, प्रेम की एक धक धक भी होती है। तो सोचते हैं कैसे बने, क्या करें। तो राधा रानी के भाव को लेना चाहते हैं, लेकिन स्वयं अपने रूप से श्याम घन सांवले इस रूप में नहीं ले सकते हैं। राधा रानी का भाव लेने के लिए राधा जी की द्युति लेनी पड़ेगी, राधा जी की कांति। राधा रानी की जब कांति स्वीकार करेंगे तब राधा रानी का भाव हृदय में उठेगा। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में हैं और श्रीमती राधा रानी के शरीर की कांति को स्वीकार किए। प्रसिद्ध शरीर तो सांवला है लेकिन एक गोरे हो गए, पर है श्री कृष्ण। कृष्णदास कविराज ने श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन लीला में देह भेदम गतौ तौ, लीला के लिए दो शरीर इनका है, ये एक ही हैं। तो पहले भी एक हैं और लीला में दो हैं, और पुनः एक बार इनकी इच्छा हुई तो ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक होकर के आए। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं राधा कृष्ण दोनों श्री गौरांग के रूप में आए, क्योंकि हैं तो वास्तव में वे कृष्ण हैं, पर भाव लिए हैं राधा रानी का, मैं कृष्ण हूं ये भाव उनको नहीं रहता। बल्कि अगर कोई उनको कह देता था कि आप तो श्री कृष्ण हैं, विष्णु के अवतार हैं, ये कृष्ण हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कान बंद कर लेते थे। पर कभी कभी तो ऐसे भी कहते थे अगर कोई मुझे ऐसा कहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कोई साहस नहीं कर सकता था उनके सामने कहने का कि आप कृष्ण हैं या विष्णु हैं। भावना यही होती थी कि मैं कृष्ण का दास हूं, और गंभीर आदि में तो यही केवल भावना रहती थी कि मैं कृष्ण की प्रिया हूं, मैं राधा रानी हूं, यही भाव होता था। तो भाव राधा रानी का और शरीर की कांति भी राधा रानी का और स्वरूप स्वयं अपना कृष्ण का, इसको स्वीकार करके ले आए। इसी के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का आस्वादन दो तरह से होता है। तो वे विषयालंबन हैं भक्ति के, प्रेम के, और भक्त आश्रय आलंबन है। तो आलंबन चाहिए, जैसे एक लता चढ़ती है किसी चीज का आश्रय लेकर के, वृक्ष का, तो उस विषय को विषय आलंबन कहते हैं। किसके प्रति प्रेम किया जाए, किससे प्रेम किया जाए, किससे स्नेह किया जाए, सब कुछ तो वो उसके विषय है कृष्ण उनसे। लेकिन कौन करेगा, कहां पर ये लता उगेगी, वो है आश्रय आलंबन, भक्त का हृदय। तो भक्त का हृदय अर्थात भक्त आश्रय आलंबन है और कृष्ण स्वयं विषय है। लेकिन आश्रय को जो आनंद प्राप्त होता है उसमें विषय को प्राप्त नहीं होता है। फल खाने वाले को जितना आनंद मिलता है, फल को उतना आनंद नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता होगा, फल तो जड़ है। तो कोई बहुत स्वादिष्ट फल है, सब है, लेकिन उस अपना स्वाद क्या लेगा, वो तो खाने वाला पीने वाला व्यक्ति स्वाद लेता है। तो भगवान के मन में हमेशा ये चिंता रही, हमेशा ये स्वाद रही कि कब मैं राधिका बनूंगा और बन करके मैं अपना आस्वाद लूंगा, अपने सौंदर्य का, अपना नाम गाऊंगा और अपना रूप देखूंगा और अपने विरह में स्वयं रोऊंगा, जैसे राधा रोती राधिका रोती है उस तरह से। वो चैतन्य महाप्रभु बने, ये तो सिद्धांत दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है। यहां कृष्ण के माधुर्य का वर्णन किया जा रहा है। स्वसौभाग्य जार नाम सौंदर्य जाति गुण ग्राम। स्वसौभाग्य शब्द से अर्थ है भगवान के सभी गुण जिनमें सौंदर्य पहला है प्रधान, सौंदर्य आदि गुण। कृष्ण में अनंत गुण है, अनेक प्रकार की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है सौंदर्य। तो सौंदर्य आदि जो गुण ग्राम है, यही रूपे तार नित्य धाम, इसी रूप में सबका नित्य आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण के ब्रज बिहारी रूप में ही सब आश्रय लिए हैं, जितने भी श्री कृष्ण के गुण हैं। जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष लता आदि उत्पन्न होने का स्थान होता है, जो भूमि होती है, तो श्रीकृष्ण का यह जो स्वरूप है यही सबका आश्रय है, समस्त गुण यहीं से प्रकाशित हैं, गुणमय है ही। भूषण भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग तार ऊपर भूधन नर्तन, भूषण भूषण अंग आभूषण को भी विभूषित करने वाला उनका अंग है, परम सुंदर है, और उस पर भी जब ये खड़े होते हैं या नृत्य करते खड़े होते हैं, ताहे ललित त्रिभंग, ताहे ललित त्रिभंग, ललित त्रिभंग सुंदर त्रिभंग, त्रिभंग का अर्थ होता है तीन भंग, तीन जगह से टेढ़ा, त्रिभंग कहां कहां टेढ़े हैं कृष्ण, एक तो ग्रीवा टेढ़ी, हमेशा ग्रीवा की टेढ़ी रखते हैं, बांसुरी के तरफ झुका करके बाएं बाएं बाम बाहुकृत बाम कपोलो, तो पहला टेढ़ था, पहला मोड़ है कृष्ण के शरीर में ग्रीवा, अद्भुत उनके ग्रीवा की मरोड़ है, मुरनी तुहारी प्यारी सब सो मुराए लेते हैं। भारतेंदु हरिचंद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, गोपियां कहती हैं आपकी मुरनी ऐसी है, मुड़ करके देखना या ग्रीवा की मरोड़ कि हमारी घर गृहस्थी की सारी आसक्ति को मोड़ लेती है, खत्म कर देती है, आपके ग्रीवा के मरोड़ सबसे मन को हटा देती है। तो एक जगह तो ये टेढ़े हैं कृष्ण, और दूसरा है कमर, कमर पर भी टेढ़े, और तीसरा पैर भी सीधे नहीं रखते, से व्यत्यस्त टेढ़े ही खड़े होते हैं, इसको कहते हैं त्रिभंग, ललित त्रिभंग, बहुत सुंदर टेढ़े से खड़े होते। श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप यदि हृदय में बस जाए तो फिर निकल नहीं सकता है। एक हमारे ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि हो गए हैं बहुत पहले, का नाम था बिहारी कवि, वो सतसई की रचना की, सतसई मैंने 700 दोहा, वो छोटे छोटे दोहे हैं लेकिन अद्भुत भाव है, तो वे लिखते हैं करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे बसत हिये, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं बिहारी जी, कहते हैं मैं अपने हृदय को कुटिल बना करके रखा हूं, कुटिल का अर्थ एक पापी भी होता है और कुटिल मन टेढ़ है, मैं अपने हृदय को अनेक दोषों से भरकर कुटिल बनाया हूं, क्योंकि हे श्याम सुंदर मेरी ये योजना है किसी तरह है आपको हृदय में बसाना है, तो मैं सीधा हृदय नहीं रखा हूं, निष्कपट हृदय नहीं रखा, कुटिल हृदय रखा हूं, क्योंकि कुटिल हृदय में आप कुटिल कैसे खड़ा होंगे, आपके साइज के अनुसार अपने हृदय को बनाकर रखा हूं, कि आप टेढ़े हैं तो टेढ़े ही हृदय में आटेंगे ना, आपको सीधे हृदय में खड़ा होने में दिक्कत होगी। तो करो कुबत जग कुटिलता, चाहे दुनिया हमको कुबत करे, हमारी निंदा करे, कुछ भी करे कि इतना बड़ा पापी है, कपटी है, ये है वो है, करो कुबत जग कुटिलता, कुटिलता तजव न दीन दयाल, लेकिन हे दीन बंधु मैं अपनी कुटिलता को टेढ़ापन को पाप को छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, आप तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं तो आपको बड़े बड़ा बड़ी कठिनाई होगी सीधे हृदय में खड़ा होने में, इसीलिए आपके साइज के अनुसार मैं टेढ़ा रखा हूं और तीन जगह से टेढ़ा हूं, मैं तीन जगह से टेढ़ा हूं, त्रिताप से उनका मतलब है कि मैं तीन प्रकार के दुख से दुखी हूं और मैं तीन जगह से टेढ़ा हूं, अथवा प्रकृति के सत्व रज तम इन तीन गुणों के कारण मैं बहुत त्रिविध पाप किया हूं, तो आपके साइड से हमारा हृदय मिल जाए इसके लिए मैं कुटिलता नहीं छोड़ सकता हूं, पाप नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप ऐसे सरल हृदय में बसने में दुखी होंगे, आपको सीधा खड़ा होना पड़ेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। या जी भगवान को अपने हृदय में बसाने की युक्ति निकाल रहा है कभी कि आप ऐसे हैं तो ऐसे हैं। भगवान त्रिवक्र को पसंद करते हैं, मथुरा में गए तो तीन जगह से टेढ़ी औरत को ही पसंद किए। त्रिवक्रा उसका नाम भी था, और कहीं नहीं वो किसी से बात कर रहे हैं तो सीधे कहते हैं तुम कौन हो सुंदरी, अरे अंगराज किसके लिए ले जा रही हो, क्या हमको दे सकती हो, तुम्हारा अचिरात बड़ा मंगल होगा अगर दोगी। तो उसने तुरंत दे दिया। तो भगवान त्रिभंग हैं, त्रिवक्रा को देखकर प्रसन्न की। ये त्रिभंग मुद्रा केवल श्री कृष्ण में है, अन्य किसी भगवत स्वरूप में नहीं है, यह स्पेशल इनका स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं ताहे ललित त्रिभंग भूषण रे भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग तार ऊपर भ्रुधनु नर्तन, और उसके ऊपर इस स्वरूप का वर्णन है, इतना सुंदर तिरछा खड़ा होते हैं और उस पर भौहों का नर्तन। सीधा साधा कोई योग साधना और ध्यान भगवान नहीं करते हैं, ब्रज बिहारी ब्रज में रहने वाले भगवान भौहें मटकती रहती है, इधर उधर देखना इधर उधर देखना, किसको किस तरह से हंस करके देखेंगे, कैसे चलेंगे, और कोई ताल बताए, ताल बताते हैं, राग बताते हैं, गान का स्वरूप सब। एक तो ललित त्रिभंग परम सुंदर अंग, उस पर ललित त्रिभंग और उस पर भौहों का नचाना, तार ऊपर भ्रुधनु नर्दन तेरछे नेत्रांत बाण तार दृढ़ संधान बिंधे राधा गोपी गणिर मन। एक तो भौहों की मड़ोर और दूसरे तिरछी दृष्टि से देखना, हमेशा तिरछी दृष्टि से। भगवान का मुख है, अगर ऐसे सामने कभी है, लेकिन दृष्टि हमेशा तिरछी। केवल मां यशोदा के सामने जब आते हैं तो थोड़ा सीधा देखते, नहीं तो इसके बाद चाहे सखा हो, चाहे गौएं हो, चाहे श्री गोपीजन हो, कुछ भी हो, तिरछा देखने की इनको आदत ही है हमेशा। चूंकि ब्रज में उनको तिरछा देखना भी पड़ता है, अगर सामने देखे तो लोग निंदा करना चालू करते हैं, यह श्री गोपी में आसक्त है, इसीलिए हमेशा तिरछा देखते हैं। तो तिरछा देखना क्या है, वो बाण जैसा है, उस बाण का अनुसंधान कौन है, किस पर वो बाण चलाते हैं, नेत्र बाण राधा आदि गोपी गण है, श्री गोपी जन जिनमें श्री राधा जी प्रधान हैं। कोटि ब्रह्मांड परव्योम तहा जय स्वरूप गण तास बार बले हरे मन। परव्योम में स्पिरिचुअल स्काई में जितने भी भगवान के धाम हैं जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और उन वैकुंठों के जो अधीश्वर हैं स्वयं भगवान नारायण आदि, उनके भी चित्त को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी आकर्षय से ही लक्ष्मीगण। जो पतिव्रताओं में शिरोमणि हैं, स्वप्न में भी पर पुरुष के तरफ नहीं सोच सकती, मन नहीं जा सकता, लेकिन उन सब लक्ष्मी गणों को अपने वेणु ध्वनि से, अपने रूप आदि से आकर्षित कर लेते, सब कृष्ण की कामना करती है। चढ़ी गोपी मनोरथे मनमथे र मन मथे नाम धरे मदन मोहन। गोपियों के मन रूपी रथ पर चढ़ करके और मनमथ के मन को भी मथ देते हैं। मनमथ कहते हैं कंदर्प को, कामदेव को, जो मन को मथ दे, विचलित कर दे, उसको मनमथ कहा जाता है। तो मनमथ र मन मथ है, लेकिन श्रीकृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि मनमथ के भी मन को मथ देते हैं। ऐसी कथा है कि जब भगवान रासलीला प्रारंभ कर रहे थे तो कामदेव आया ब्रज में, उसका मन बहुत बढ़ गया था। उसने सोचा कि मैं शिव को नचा दिया अपने पांच बाणों से, मोहिनी को देख करके, मोहिनी स्वरूप भगवान को देख करके शिव बिल्कुल नंग धड़ंग भाग रहे थे उसके पीछे, अपने शरीर की सुधि नहीं थी मोहिनी का आलिंगन करने के लिए। यहां तक कि उनका वीर्य छल होता जा रहा था, सोने चांदी की खाने जो बनी बाद में तो बनी, और भगवान ऐसी जगह पर भाग रहे थे मोहिनी जहां पर ऋषि लोग खासकर के ब्रह्मचारी सन्यासियों का आश्रम था जंगल में, तो वैसे से भागते जा रहे थे, दिखा रहे थे कि यही था दिखाने, देख लो शिव जी की ये दुर्दशा हो गई, इसीलिए सावधान रहना है। उन ऋषियों के आश्रम से भगवान जा रहे थे और भगवान शिव का वीर शरण हो रहा था और वे जा रहे थे आलिंगन करने के लिए, लेकिन अंत में भगवान की कृपा से अपने स्वरूप में आ गए भगवान शिव। लेकिन थोड़ी भी लज्जा नहीं आई उनको भगवान से, क्योंकि अपने स्वामी के माया बल से वे हारे हुए थे, इसलिए उनको कोई शोक नहीं हुआ, आश्चर्य भी नहीं हुआ। तो भगवान उनको आश्वासन दिए, फिर अपने स्वरूप से चतुर्भुज रूप से भगवान शिव का आलिंगन किए, तो बिल्कुल सुखी हो गए। तो कामदेव शिव जी को नचाया, इंद्र को भी परेशान किया इसने, इंद्र ऋषि पत्नी के साथ गौतम जी की पत्नी अहल्या के साथ संपर्क किए, ये कामदेव ऐसा किया, और ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री के पीछे दौड़ा दिया, कामदेव इतना प्रबल है। तो इस कारण से कामदेव का दर्प बहुत बढ़ गया था, दर्प बढ़ गया था कि अब कृष्ण को मैं मोहित कर लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अद्भुत तरीके से, ठीक है मुझको परास्त करो, मैं कोई तपस्या में योग में नहीं हूं, मैं अनंत कोटि स्त्रियों के साथ रहूंगा और फिर भी तुम मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाओगे, मैं तुमको मोहित करूंगा। इस तरह आया कामदेव, जब देखा मदन मोहन को, भगवान कृष्ण को, कृष्ण को जब देखा त्रिभंग मुद्रा में खड़े मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाते हुए मोर पंख सिर पर लहरा रहा था, देखते ही कामदेव मूर्छित होकर के गिर गया आनंद में, आनंद में मूर्छित होकर के गिर गया, कहां धनुष कहां बाण कहां, अंत में जब उसकी स्त्री ने देखा कि अरे तो हमारा पति मर जाएगा, मूर्छित हो गया, वो उठा करके टांग करके लेकर के भागी। मनमथेर मन मथे नाम धरे मदन मोहन, श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मदन को भी मोहने वाला, मदन का अर्थ है जो सबको मदमत कर देता है, बेहोश कर देता है, वासना भर देता है, उसको मदन को, मदन के भी मद को हर लिए, उनके मत, उसके मन को मत दिए, नाम धरे मदन मोहन। यह बिल्कुल दिव्य लीला है, प्रकृति का कोई गंध ही नहीं है, दिव्य है। तो चढ़ी गोपी मनोरथे मनमथेर मन मथे नाम धरे मदन मोहन, मदन मोहन नाम, जिनी पंचसर दर्प स्वयं नव कंदर्प, पंचसर के दर्प को, पंच बाण कामदेव के दर्प को नष्ट कर दिए, और स्वयं नव कंदर्प, श्रीकृष्ण स्वयं ही नवीन मदन है, अप्राकृत मदन। हम लोगों के सेकंड दीक्षा में जो सातवां मंत्र बोला जाता है यही इसी कंदर्प के लिए है, स्वयं नव कंदर्प, नवीन मदन, नव मदन इनको कहते हैं। वह प्रसिद्ध मदन वो तो कुचित है, प्राकृत है, इस भौतिक जगत में काम करता है, चाहे देवताओं को बस में कर कल चाहे कुछ को, लेकिन ये मदन जो नवीन मदन श्रीकृष्ण अप्राकृत मदन, ये तो संपूर्ण विश्व के सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जब लक्ष्मी गणों को भी आकर्षित करते हैं, भगवान नारायण आदि को भी आकर्षित करते हैं, अब तो कहना है क्या, भगवान शिव को भी आकर्षित करते। यह मदन तो एक बार भगवान शिव के आंखों से जल कर राख हो चुका है, उनमें काम विकार नहीं है, वास्तव में भगवान के वे रूप से मोहित थे शिव जी। ऐसे कहने के लिए कहा जाता है कामदेव उनको बस में कर लिया, लेकिन वो तो काम के बैरी हैं, उनकी तीसरी दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल कर राख हो गया था एक बार। तो वे भी काम को जीते हुए हैं, पर वे इस मदन के भाव को नहीं जीत पाते हैं, तो कृष्ण के रूप पर वो भी लट्टू रहते हैं, इतना सुंदर है कृष्ण। तो जिनी पंच सर दर्प, जिनी मैंने जीत करके पंच बार कंदर्प के अभिमान को दबा दिया, स्वयं नव कंदर्प रास करे लैया गोपीगढ़, रास करते ऐसा जितेंद्रिय व्यक्ति जो कंदर्प को भी मोहित करे, स्वयं नवीन मदन और श्री गोपी जनों को लेकर के रास करते हैं। राशेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से ही ये रास संभव होता है, और राशेश्वर श्री श्याम सुंदर ये रास करते हैं वृंदावन में। रास का रहस्य, अब तो यह समय कम है, तो रास लीला का भी बहुत बड़ा रहस्य है। रस शब्द से रास बनता है, रसो वैसह। उपनिषद कहता है कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म ही रस है, वास्तविक रस। तो श्री कृष्ण के विषय में सोचना बोलना ये सब रास ही है एक प्रकार से। इसीलिए आप देखेंगे कोई गीत गाया जाता है श्री कृष्ण के विषय में तो उसको रसिया कहते हैं। रसिया का कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं रसिया क्या होता है, रसिया कुछ नहीं है, रस अर्थात परब्रह्म श्री कृष्ण के विषय में कुछ गाया हुआ चीज है, चाहे उनके रूप का वर्णन हो, चाहे कोई लीला का वर्णन हो, चाहे दया का वर्णन हो, जो भी वर्णन है उसको रसिया कहते हैं। एक तर्ज भी रसिया होता है लेकिन रसिया का वास्तविक अर्थ है रसराज, श्री कृष्ण के विषय में कोई गीत प्रबंध आदि। तो रास करे लैया गोपीगढ़, निज सम सखा संगे गोगण चारण रंगे वृंदावने स्वच्छंद विहार, अपने समान वयस के सखाओं के साथ गोगण चारण रंगे गोचारण करते हैं, और गोचारण रंग गोचारण लीला करते हैं, गोचारण में ही अद्भुत आनंद होता है, खेलते रहते हैं। वृंदावने स्वच्छंद विहार, वृंदावने स्वच्छंद विहार, छंद का अर्थ है इच्छा, स्वच्छंद का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार, कोई प्लान के अनुसार, कोई दूसरे के दबाव के अनुसार या कोई प्रोग्राम बना दिया है इसलिए करेंगे, नहीं नहीं, अपनी इच्छा से, चाहे घूमना, गोचारण में जाना, रास करना, सखाओं के साथ खेलना, वृंदावन में स्वच्छंद विहार। यह भगवान का अपना घर है ब्रज, और यहां कोई भूभार हरण आदि नहीं करते हैं, वे स्वयं आनंद में भर करके लीला करते हैं, आनंद लेते हैं सखाओं के साथ खेल कर। जैसे जोग माया का बल बताया गया कि जोग माया का बल दिखा, क्या बल है, श्री कृष्ण पर ही उसका बल देखिए। श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सबके गुरु हैं, सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में हैं, लेकिन ऐसे भगवान को भी भगवान की योग माया अज्ञ बना देती है, अज्ञ जैसे कोई ज्ञान ही ना हो। कई बार वे ऐसे खोजते, जैसे बछड़ों को खोजना, ब्रह्मा जी चुरा लिए तो क्या वे जानते नहीं है कि ब्रह्मा जी करामात है, जो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय में है, उनको पता है कि ब्रह्मा बछड़ा चुराया है, लेकिन फिर भी नदी के तट पर या कुंज में पर्वत की गुफा में इधर उधर झांक रहे थे, हमारे बछड़े कहां गए, बछड़े कहां, नहीं मिले, उदास चित और उदास चेहरे से आ गए फिर जहां सखा खा रहे थे, तो इनको भी वे हर लिए थे ब्रह्मा जी, यहां पर फिर देखते कहां गए कहां गए। तो सर्वज्ञ परमेश्वर को भी उनकी स्वरूप शक्ति मतलब उन्हीं की इच्छा उनको अज्ञ बना दी, इतना आज्ञ। और जो सब तरह से पूर्ण काम है, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, स्वराज्य संपत्ति से समृद्ध हैं, सब कुछ उनका है, फिर वे प्रभु माखन के चोर बना दिए जाते हैं जोग माया द्वारा, माखन की चोरी करते किसी घर में घुस करके और चोरी करके, और चोरी करके खाना लगता है कि कब का ये लड़का भूखा है और उसको ऐसे मिलेगा नहीं, जबकि सारा ब्रज अपना है, अपने घर में भी 9 लाख गौएं हैं, माखन ताजा सब अपार होते हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान की शक्ति ऐसी है, स्वरूप शक्ति, माया शक्ति नहीं, माया शक्ति तो हम जैसे जीवों को बस में करके और भटका करके रखी है, अज्ञ बना करके रखी है। यहां पर जीवों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने को देह मान रहे हैं, लेकिन सब महामाया के द्वारा किया हुआ है, लेकिन भगवान को भी इस तरह का करने वाली है एक शक्ति जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। पर ऐसा होते भी भगवान अपने स्वरूप में ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वे अज्ञ हो गए सचमुच के, तो वे अज्ञ बना देती है, माखन का चोर बना देती है। गोपियां थोड़े बात के लिए कहती हैं कि लाला तुम नाचो, बहुत अच्छा नाचते हो, अगर नाचोगे तो जानती हो क्या इनाम दूंगी, जो मठा बेचने के लिए, छाछ बेचने के लिए कोई कटोरी काट की रहती है तो छछिया कहते हैं, तो अगर तुम नाचोगे तो हम छछिया भर तुमको छाछ दे दूंगी, तो नाचने लगते हैं, छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। इस तरह से जोग माया की शक्ति है, और की तो बात छोड़ दीजिए, सबको अपने बस में रख ही रही है, भगवान का यह रूप इतना सुंदर है, तो नवीन मदन है, थिरकते हुए चलते हैं, और स्वरूप का वर्णन है जार बेड़ु ध्वनि सुनी स्थावर जंगम प्राणी पुलक पुलक कंपाश्रु बहे धार, जिनकी बेड़ु ध्वनि को सुन करके स्थावर या जंगम प्राणी ये सभी पुलकित होते हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। स्थावर या जंगम प्राणी कोई हो, चाहे गाय हो या पक्षी, जो जो जंगम है, जो चलते हैं, या मनुष्य और वृक्ष लता आदि ये स्थावर हैं, तो इनको भी पुलक होता है और अश्रुधारा बहती है, जिनके वेणु गीत को सुन करके मुक्ता हार बक पाती इंद्र धनु पिछ तते पीताम्बर बिजुरी संचार, ये संबंध तत्व का वर्णन है माधुर जी का। मुक्ता हार बक पाती, श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर मोतियों की माला ऐसी लगती है सुंदर, जैसे वर्षा काल में आकाश में बादल छाते हैं सांवले मेघ, और सांवले मेघ के नीचे जब बक पाती, बक की लाइनें चलती हैं, आप लोगों ने देखा होगा लाइन बना करके बगुले चलते हैं, उड़ते हैं सांवले बादल के नीचे, बड़े सुंदर लगते हैं, बड़ा हरा भरा छाया रहता है, और सांवला मेघ है, मेघ के नीचे आकाश तल में बक पाती बगुले उड़ते हैं उज्जवल वर्ण के, और कभी कभी देखा जाता है ध्यान से बड़े डिसिप्लिन में उड़ते हैं लाइन में सबरपी इंडिविजुअल अलग अलग उनकी पंख है उनका, सब कुछ शक्ति अलग है, लेकिन फिर भी मनुष्य से भी ज्यादा डिसिप्लिन में चलते हैं, इस तरह से उड़ते रहते हैं, कभी ऐसे बन जाते हैं, कभी ऐसे बिखर जाते हैं, कैसे चलते रहते हैं। तो श्रीकृष्ण के वक्षस्थल पर जो मुक्ता हार है, मोती की माला, मुक्ता हार बक पाती इंद्र धनु पिछ पाती, और बादल छा जाता है आकाश में, और जब वर्षा करता है तो वर्षा करते समय, कभी वर्षा जब बंद होने को होता है तो, या वर्षा के समय में ही इंद्र धनुष उगता है, कई रंग का धनुष होता है इंद्रधनुष, तो इंद्रधनु पिछ तती, तो इस श्यामल घन श्री कृष्ण के लिए दृष्टांत देते हैं, इनके जो सिर पर पिछ तती है, मोरपंख तति, कभी कभी कई मोरपंख कृष्ण लगाते हैं, उसको पिच्छ तति कहते हैं। तति मतलब समूह, मयूर पंख का समूह। ऐसा लगता है जैसे बादल में इंद्र धनुष उगा हो, ये सांवले बादल है श्री कृष्ण, मेघ है। तो कृष्ण और पीताम्बर बिजुली संचार, और पीताम्बर ऐसा लगता है जैसे उससे आकाश स्थित बादल में बिजली चमके, और अस्थिर बिजली, बिजली तो चमकती है लेकिन बहुत थोड़े देर तक चक 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 कर अदृश्य हो जाती है। लेकिन ये बिजली ऐसी है जो अचल रहती है, नाचती है, फहराती रहती है सांवले मेघ के साथ, लेकिन लुप्त नहीं हो जाती। तो पीताम्बर बिजुरी संचार, ये पीताम्बर ही बिजली जैसा लगता है। कृष्ण नव जलधर, कृष्ण नव जलधर हैं। केवल जलधर नहीं, जलधर कहते हैं बादल को, श्री कृष्ण नवीन जलधर हैं। कृष्ण नव जलधर, जगत सस्य ऊपर, और इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, ये सब सस्य की तरह है, फसल की तरह है, पौधों की तरह, और इन पर श्री कृष्ण वर्षा करते हैं। कृष्ण नव जलधर, जगत सस्य ऊपर, बरिष लीलामृत थार, लीलामृत की वर्षा करते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं संसार में, और उस लीलामृत से पोषण किसका होता है, जैसे झुलसते हुए पेड़ पौधे या घास ये सब हरे भरे हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही समस्त प्राणियों में लीलामृत की वर्षा से श्री कृष्ण प्रेम रस भर देते हैं। सभी कृष्ण के प्रेमी होते हैं, और ये प्रेम बड़ा सुख है, पंचम पुरुषार्थ है। तो यह बादल तो जलधार बरसाते हैं, लेकिन कृष्ण नव जलधर, कृष्ण मेघ, श्यामल मेघ, ये लीलामृत की वर्षा करते हैं। और कई जगह गिरिराज में या कहीं भी चारों तरफ लीला करते रहते हैं ब्रज में। इसके साथ ही ये मथुरा में वर्षा करते हैं, द्वारका में वर्षा करते हैं। इन तीन लोकों को गोलोक कहा जाता है। गोलोक में तीनों हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। खास करके यहां वृंदावन का वर्णन किया जा रहा है कि लीलामृत की वर्षा करते हैं। तो स्थाने माधुर जब भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचार तहा सुख व्यासे रनंदन। माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, जो श्री कृष्ण में मधुरता है, रसिकता है, वही भगवत्ता का सार है, वही ऐश्वर्य का सार है। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहीं कहीं किया है। माधुर जब भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचार तहा सुख व्यासेर नंदन, स्थाने स्थाने भागवते करी अक्षर जनाईते जहा सुनी माते भक्त मन भक्तगण। स्थान स्थान पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, लीलामृत वर्षा। शिशु अवस्था में श्री कृष्ण जो लीला किए हैं लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की, वह भी परम मधुर है, वो भी एक लीलामृत है उसकी वर्षा। इस छवि पर, श्री कृष्ण के इस बाल मनोहर लीला पर, बाल मूर्ति पर, कई भक्त निरसावर रहते हैं। श्रीपद वल्लभाचार्य जी तो भगवान के इस रूप की उपासना ही उन्होंने चालू की, बहुत अच्छा है। तो श्रीकृष्ण शिशु अवस्था में जो लीला की वो भी परम मनोहर है। इसके बाद कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था। ऐसे किशोर अवस्था ये धर्मी है, और शिशु अवस्था या कुमार अवस्था धर्म है। यहां धर्म का अर्थ है कि असली जो स्वरूप है कृष्ण का, नित्य असली जो स्वरूप है वो है किशोर। उनको अंशी कहा जाता है, और सबको अंश। कुमार अवस्था भी उनकी वो नित्य लीला है, पौगंड अवस्था, लेकिन किशोर अवस्था की लीला अद्भुत है, और यही वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का। कभी कोई व्यक्ति मन में सोच सकता है कि भाई कृष्ण तो बचपन में ऐसे हैं, फिर बड़े ऐसे हुए, लेकिन वास्तव में उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप है नव किशोर, पर उनकी शिशु लीला भी बहुत अद्भुत है। बचपन में माखन खाना, माखन खाते हुए चलना, माखन खा रहे हैं, हाथ में लिए हैं, बैठे हैं, माँ ने दे दिया ऐसे, तो फिर चलते हैं तो एक हाथ से चलते हैं और माखन लिए हुए हैं। इस छवि का वर्णन श्री लसूरदास जी ने किया है अपने पद में। अरे प्रसंग आ गया तो मैं इसको कह देता हूं, उस पद को। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, कर्म अर्थ हाथ, नवनीत माखन, हाथ में माखन लिए हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं श्री कृष्ण, बहुत सुंदर लग रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंदित, घुटुरन चलत, कृष्ण घुटुरन चल रहे, मतलब जानू, घुटनों से और बांह से हाथ से चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पिछले पैर को ठठेरते हैं, खींचते हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंदित, और धूलि से शरीर बहुत सुंदर लग रहा है, शरीर में धूल लगी है, रेणु तन मंडित। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, कहीं से दही खाए हैं, माँ यशोदा ने दिया है, चाहे चोरी करने की तो अभी ताकत नहीं है। तो देती है कटोरी में खाने के लिए, खिलाती है तो स्वयं खाना चाहते हैं, खाने में मुख में डालना है लेकिन ऐसे लगा लेते, तो मुख दधि लेप किए। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। क्या छवि का वर्णन सूरदास जी करते हैं। चारु कपोल, गाल बड़े सुंदर है, चारु कपोल लोल लोचन, और आंखें लोचन चंचल हैं, काजल दिया गया चंचल, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, और गोरोचन का तिलक लगाई है माँ यशोदा कृष्ण को। गोरोचन कहते हैं किसी गाय के मस्तक से एक पीला पदार्थ निकलता है उसके मरने के बाद, उसको गोरोचन कहते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है बच्चों के लिए, तो गोरोचन का तिलक दिए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, अलग लटक रही है। छोटे छोटे बच्चों का तो कोई सेविंग होता नहीं है, तो बढ़ करके लटका हुआ है, उसके लिए कहते हैं कि मुख पर अलके लटकी है, जैसे लगता है कि भौंरे मधु पी पी करके मतवाले होकर के लटके हुए, मादक मधु ही पिए, पहला लाइन याद नहीं आ रहा है। और इसके बाद सूरदास जी कहते हैं, कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचि रहिए, और हृदय पर तो कंठ में कठुला है, कंठी है, काठ की चीज बांधते हैं, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, और बाघ बघ नखा पहने हैं, मान डाल दिए, उसे कोई विघ्न बाधा आदि नहीं होती है, टोना नहीं लगता है, तो राजत रुचि रहिए। अंत में सूरदास जी कहते हैं, धन्य सूर एको पल यही सुख का कल सत्य कल्प जिए। अपने जीवन में कोई व्यक्ति अगर पल भर के लिए भी इस छवि को देखा है तो यही वास्तविक सुख है। सैकड़ों कल्प तक जीने से क्या लाभ है? इस छवि को देखे बिना कोई बहुत लंबी जिंदगी जिए, इस जिंदगी में लाभ क्या है? क्या क्या वे दृश्य देखता है, सुनता है, खाता है, लेकिन धन्य सूर एको पल यही सुख का सत्कल्प जिए। सैकड़ों कल्प तक जीने से क्या फायदा है? क्षण भर भी इस छवि को देखा यही वास्तविक लाभ है। तो श्री कृष्ण की चाहे बाल माधुरी हो, चाहे किशोर अवस्था की, एक समान है। और जो लीलामृत की वर्षा की, जैसे शिशु अवस्था में रिंगण लीला कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, और इसके बाद माखन चोरी किए, मृद भक्षण, माटी खाते हैं, माटी खाना भी उनका एक लीलामृत है, उसकी वर्षा करते हैं। और जो परम सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, जिनकी वेद वाणी परम सत्य है, उन प्रभु को भी योग माया ने झूठ बोलने वाला बना दिया। माँ जशोदा पूछती है, तुम मिट्टी खाए हो? न हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशांसिन। नहीं माँ, हमने नहीं खाया है, ये सभी झूठ बोलते हैं, इनको आदत है झूठ बोलने। जो लोग देखे हैं ये खाया है, और तब जाकर माँ से कहे थे, तो माँ के आते आते तब तक मुंह में लार बना करके सारा मिट्टी घोंट लिए, साफ मुख हो गया, नहीं खाया है। अगर तुमको विश्वास नहीं तो मुंह खोल रहा हूं, देखो इसमें कहीं मिट्टी लगा है, कहीं मिट्टी लगा है, नहीं खाया। श्रीपद सनातन गोस्वामी याद करते हैं कि सर्वे सब पर, सर्वे मिथ्या विश्वसन, तो सर्वे को इधर लगा रहे हैं, ना हम भक्षितवान अपि सर्वे, केवल हमने ही नहीं खाया है मां, सबने खाया है, तुम देखो, सब मेरे मुख में देखो, अब मैं दिखा रहा हूं, ये भाव था। ये सब झूठ बोलते हैं, मैं नहीं खाया। माखन की चोरी में तो रोज ही झूठ बोलना है, पर वह असत्य भाषण नहीं है, वास्तव में सत्य स्वरूप परमात्मा की वो सब लीलाएं हैं। जैसे सत्य स्वरूप कोई समुद्र हो तो उसकी तरंग भी सत्य होगी, तो सत्य ही जो भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, परम सत्य है। पर योग माया का चमत्कार श्री कृष्ण को इस तरह से किया, सखाओं के साथ वन में खेलना, घूमना, लीला करना, गायों को चराने जाना, गायों को लेकर के आना शाम को, जिसको आवनी लीला कहते हैं, इस तरह से श्री कृष्ण लीलामृत की वर्षा करते हैं। स्थाने स्थाने भागवते वर्णी अच्छे जानते, जहां सुने माते भक्तगण, कहिते कहिते रसे, श्लोक पढ़े प्रेमावेशे, प्रेमे सनातनेर हाथ धरी, गोपी भाव कृष्ण गुण, जे करिल वर्णन भावावेशे मथुरा नगरी। जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे थे तो उस समय वहां की नागरियां स्त्रियां श्री कृष्ण के गुण, सौंदर्य आदि और गोपियों के भाग्य का वर्णन करती हैं। एक अलग श्लोक है, तो उसकी व्याख्या कल की जाएगी, उस श्लोक की। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, गौर वाणी, जो भगवान कृष्ण के गुणों का, लीलाओं का वर्णन करती है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।